मुझे जैसे लग रहा है कि मैं अपने चारों तरफ अल हसीब के इनामात को पा रही हूँ। वो मुझे काफ़ी भी है, मैं हर वक्त उसकी मोहताज भी हूँ। मेरा वजूद अल हसीब ही कमर होने मिन्नत है, इसी ने मुझे पैदा किया, वही मुझे रिस्क देता है। अभी जो मैंने खाना खाया मुझे उसने दिया, और दुनिया और आखिरत में वही मेरी किफ़ायत करेगा। और इस किफ़ायत में उसने किसी को शरीक नहीं किया कि अच्छा कुछ शेयर तुम भी डाल दो ना, हिस्सा डाल दो ना। और अगर कोई अपनी गलती से, नादानी से मैं कभी ये गुमान करूँ ना कि अल्लाह को छोड़ूंगी, कोई और मुझे काफ़ी होगा, तो ये मेरा ख्याल गलत होगा। गलती और फरेब है, और मैं इसी के पैदा करने से वजूद में आई हूँ। इसी का हुक्म बाकी रहेगा और इसी के हुक्म से मैं फना होंगी। मैं उसी दिन तक आपके पास हूँ जब तक उसका हुक्म है। जिस दिन अल हसीब का हुक्म आएगा मैं फना हो जाऊंगी। जब आप इस तरह अल्लाह के नामों को सामने रख कर बातें करते हैं, फिर पता चलता है कि हम बातें क्या कर रहे हैं। और अब तीसरी तारीफ लीजिए, इमाम गजाली की रहमहुल्लाह फरमाते हैं, और इसको लिखते वक्त रोइए मुहासबे के साथ अपने ताल्लुक बिल्ला को देखते हुए। कहते हैं कि जो कोई अल्लाह ताला का हो जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। मन का नलिल्लाही का नल्लाहु लहू। पूछिए ज़रा, हो गई हूँ मैं अल्लाह की? क्या मैं अल्लाह की हूँ, उससे ताल्लुक़ जुड़ गए? तो फिर फिक्र ना कीजिए, अल्लाह ताला हर एक के लिए काफ़ी हैं। और अल हसीब ऐसी सिफत जो अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे के बारे में तसव्वुर नहीं की जा सकती, इसलिए कि किफ़ायत करने वाला भी किफ़ायत का मुख्ताज होता है। जी, दुनिया में कफ़ील बनाते हैं, सऊदीया में कफ़ील सिस्टम चलते हैं, कहीं जाके रहना है तो आपको किसी को अपना कफ़ील बनाना है, तो वो कब तक है? वो भी तो आगे से किसी का कफ़ील है ना, या कोई उसका कफ़ील है। और वो ज़ात ऐसी हो जिसका वजूद हो और वजूद भी दायमी और कामिल हो, किसी का मोहताज ना हो। बताइए ज़रा, इस तारीफ़ पे कौन पूरा उतर सकता है अल्लाह के सिवा? अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई ऐसा वजूद नहीं है जो किसी दूसरे के लिए पूरी तरह काफ़ी हो। अल्लाह ताला अकेले ही हर एक के लिए काफ़ी है। अब देखिए, दुनिया में आप कहते हैं पर फैमिली, पर यूनिट, कोई एक को काफ़ी, ये कैसे हो सकता है मैं सबको किफ़ायत करूँ? मसलन अगर आपको कोई कह दे आप अपने ख़ानदान के हर फर्द को खाना भेजें, या आप उनके खाने का खर्चा उठा लें, कहेंगे सबको कैसे? मुमकिन नहीं। एक घर में लोग कहते हैं लो जी एक कमाने वाला है, तो शुक्र कीजिए एक ही कमाने वाला हो, एक ही होता है। आज ये भी एक हिसाब दे दिया कि नहीं, सारे कमाएंगे तो बुरी होगी, क्योंकि ख्वाहिशें भी सबकी अलग हैं। खैर, अकेला अल्लाह ही इस तारीफ पे बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि बास के लिए किफ़ायत करने वाले और बास के लिए ना हो, बल्कि तमाम हाजतों और ज़रूरतों के लिए अकेले अल्लाह ताला ही किफ़ायत करने वाले हैं। और अल्लाह ही के इरादे से सारी चीज़ें वजूद में आती हैं, उनको दवाम मिलता है कायम दायम, और अल्लाह ताला ही के इरादे से इनकी तकमील होती है। चलिए मिसाल लेते हैं, दुनिया में जब इंसान आता है सबसे पहले किसको देखता है? बच्चा माँ को देखता है। अब अगर हम ये गुमान करने लग गए कि इस बच्चे को जिसे माँ दूध पिलाती है उसकी परवरिश करती है, तो इसकी माँ इसकी किफ़ायत कर रही है? ना, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ही ने उसकी किफ़ायत फरमाई है, क्योंकि पहले तो अल्लाह ने उसकी माँ को पैदा किया। अल्लाह अगर माँ को पैदा ना करता या बच्चे को जन्म देते में माँ मर जाती तो क्या होता? तो इसका तो माँ का इख्तियार तो नहीं है। फिर आप देखिए, माँ के जिस्म में दूध पैदा किया, फिर दूध को हासिल करने में बच्चे की रहनुमाई की, वाहदई ना हो नजदई, बच्चा पैदा होते ही खुद ब खुद दूध ढूंढने लगता है। किसने सिखाया? कोई कोर्स, कोई बात, कोई ट्रेनिंग? वो पीछे से सिखा के, वो ये हिदायत है जो दुनिया में आती जरूरत होती है इसकी। पीछे से माँ के पेट में बिता दिया जाता है कि जाकर इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ माँ से लेना है। तौहीद सिखाई जाती है बच्चे को। फिर आप देखिए, तीसरा काम उसने क्या किया कि माँ के दिल में इस बच्चे के लिए शफकत और मोहब्बत पैदा की, हत्ता कि माँ ने इस बच्चे को उठा लिया। खुद कितनी तकलीफ में होती है, कोई और हो तो के हाथ न लगाना, पीछे हो जाओ, और फिर दूध पिलाती है। अब ये सारे जाहरी असबाब किफायत के उन असबाब के बन गए कि जो अल्लाह ने पैदा किए। तो लिखिए कि अल्लाह अकेले के लिए, हर एक के लिए काफी होना बहुत आसान है। अल हसीब के सिवा कोई भी ऐसा नहीं जो अकेले किसी दूसरे के लिए काफ़ी हो, कोई काफ़ी हो नहीं सकता। बल्कि आप देखिए, तमाम मखलूकात में से बास बास के मुख्ताज हैं, और तमाम मखलूक अल्लाह ताला की कुदरत में है। अकेले ये किसी की भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, बल्कि सब मिलकर भी किसी के काम तब आते हैं जब अल हसीब चाहें। तो कहिए फिर कि अल्लाह अकेला अल हसीब हर एक मखलूक के लिए बग़ैर असबाब और वसाइल के काफ़ी है, और इसकी किफ़ायत में कोई दूसरा शरीक नहीं। वो नहीं कहता कि अब ऑक्सीजन किसी और से बनवा लो, बस थक गया हूँ और पानी नहीं है, खुश्क हो गया। अगर आप खोल कर देख लीजिए सूरत अनफाल 64, अल्लाह अपने नबी को फरमाते हैं, तो फिर कहिए कि नबी काफ़ी है तुझको अल्लाह, कुरान की आयतों की रोशनी में देखते हैं जरा अल्लाह ताला का ये नाम अल हसीब कैसे है, ताकि आपको इसकी खूबसूरतियाँ भी दिखें और आप फिर इसको महसूस तो करें। तो कुरान पाक में अल हसीब कैसे है, 3 बार तो ये नाम है। मसलन सूरत निसा 86, व इज़ा हुशी तुम बि तहय्यतिन फहय्यू बि अहसना मिन्हा अव रुद्दुहा इन अल्लाह काना अला कुल्ली शयइन हसीबा। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो इसको इससे बेहतर तरीके से जवाब दो, या कम अज़ कम इसी तरह। अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है, तो सलाम का तरीका सिखा दिया और पीछे आखिर में अपना नाम रखा। फिर इसी तरह से दूसरा मुकाम है सूरत निसा की आयत नंबर 6, वक्तुलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्ता फ़दफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम वला ताकुलूहा इसराफ़ा व बिदारन अन यकबरू वमन काना गनियन फ़लयस्तअफिफ वमन काना फ़कीरन फ़लयाकुल बिल मारूफ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़शहिदू अलैहिम व कफ़ा बिल्लाही हसीबा। और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वह निकाह के काबिल उम्र को पहुँच जाए, फिर अगर तुम इनके अंदर अहलियत पाओ तो इनके माल इनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज करके इस खौफ से इनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपने हक का मुतालबा करेंगे। यतीम का जो सरपरस मालदार हो वो परहेजगारी से काम ले, और जो गरीब हो वो मारूफ तरीके से खाए। फिर जब इनके माल इनके हवाले करने लगो तो लोगों को इन पर गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। बड़ी प्यारी बात है, यतीमों के हक दिलवाने के आखिर में अल्लाह ने अपनी इस सिफत को रख कर बता दिया कि इन यतीमों का हिसाब तुमसे लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि बाप चला गया। तो फिक्र कर लो ऐसा ना हो कि कहीं तुम उनका माल खा जाओ और अल हसीब तुमसे एक एक जर्रा उनका निकलवा दे, फिर क्या बनेगा। और इसी तरह से सूरत अल अहज़ाब आयत 39 है, अल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाही व यख्शौनहू वला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह व कफा बिल्लाही हसीबा। ये अल्लाह की सुन्नत है इन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के पैगाम पहुँचाते हैं और इसी से डरते हैं, और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और मुहासबे के लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। यहाँ तो कुछ पैगामों के लेने देने की बात हो रही है। व कफा बिल्लाही हसीबा, आप देखिए 3 दफ़ा है ना कुरान में, अगर आप ऊपर नीचे इन तीनों आयतों को रख कर देख लेते हैं तो कफा बिल्लाही हसीबा व कफा बिल्लाही हसीबा 2 आयतों में तो सेम है फ्रेज, और तीसरी नल्लाह कान अला कुल्ली शयइन हसीबा, तो गोया के अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना तआला सूरत अल अनफाल की आयत 64 में फरमाते हैं, अब यहाँ लफ्ज़ हसीब नहीं आया लेकिन अल्लाह की सिफत के तौर पे आया, वो तो नाम थे ना, अब सिफात में ये नाम देखिएगा। या अय्युहन्नबी हस्बुकल्लाह व मन तबअक मिनल मोमिनीन, यानी वहाँ अल्लाह हसीब थे या नबी के साथ अपने काफ़ी होने को बयान करते हैं, यह है किफ़ायत खासा। ए नबी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरो अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। और आप जानते हैं सूरत अनफाल, तौबा, ये दोनों गजवे ओहद और बदर और तबूक पूरी जंगों के हालात से भरी हुई सूरतें हैं, यानी अल्लाह की किफ़ायत खासा है नबी आप और ईमान वालों के साथ, और आप भी इसके गवाह होंगे। अगर आपने अल्लाह ताला के लिए कभी भी कोई रिस्क लिया है, जितना ज़िंदगी में आप अल्लाह ताला के लिए रिस्क लेते हैं, अपनी ज़ाती मर्जी को पीछे कर देते हैं, अल्लाह सुबहाना ताला उतना आपके साथ ऐसे ऐसे मामले करते हैं जो आम लोगों के साथ नहीं करते, कि लोगों को ये कहना पड़ता है कि हमारे काम तो अल्लाह शायद फरिश्तों से कराते हैं, आपके काम तो लगता है अल्लाह खुद ही करते हैं। खैर, ये किसी की हद से बड़ी बात भी हो सकती है और लाड़ भी हो सकता है, लेकिन सच ये है, अनाइंद जन आबदी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, अल्लाह ताला का ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। फिर इसी तरह से सूरत तौबा की आयत 129 देखिएगा, अल्लाह के नबी को क्या हुक्म है, फ़इन तवल्लव, यानी फिर अगर ये मुंह फेर लें, नहीं सुनते, नहीं मानते, छोड़ो इनको, फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ये नबी इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस काफ़ी है, कोई माबूद नहीं मगर वो, इसी पर मैंने भरोसा किया, और वो मालिक है अर्श अज़ीम का। ये जुमला बोल के तो देखिए ऐसे लगेगा आप आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। हस्बी अल्लाह कहना, अपने आप को दुनिया की हर जकड़बंदी से आज़ाद करना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जब मेरा रब मेरे साथ है। और इसी तरह से सूरह ज़ुमर 38, कुल हस्बी अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, भरोसा करने वाले इसी पर भरोसा करते हैं। पूछिए खुद से, क्या आप अल्लाह ताला पर भरोसा करती हैं? ऐसे क्या मैं करती हूँ? अपना मुहासबा लीजिए, अपना मुहासबा कीजिए। और सबसे खूबसूरत मुकाम सूरत आले इमरान 173, आप इसकी तफसीर ज़रूर सुनिएगा जब कभी मौका। गज़वे उहद के फ़ौरन बाद का किस्सा, हमराउल असद। अबू सुफियान लश्कर लेके चले गए और जाकर ख्याल आया कि हमने क्या किया, जीती हुई बाजी हार गए। आज तो बड़ा अच्छा मौका था कि मदीना पे हमला करके इनको ख़त्म करते, क्योंकि 70 लोग तो इनके शहीद हो गए और ज़ख्मी भी हैं। चलो वापस चलते हैं। और वो क्या वापस आते, अल्लाह ने नबी के भी दिल में यही डाल दिया कि कहीं दुश्मन वापस ना आ जाए। इमेजिन तो कीजिए, 70 शहीद हैं, घर घर में मौत की खबरें, और इतनी असाब शिकन जंग से निकले, और अभी अपने आप को हथियारों से अलग नहीं किया कि जिब्राइल ने आकर कह दिया कि आपने हथियार क्यों उतार दिए, अभी तो आगे जाना है। अल्लाह के नबी ने जाकर सिर्फ एक आवाज़ दी कि चलो वापस, पीछा करेंगे दुश्मन का। कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी ने नहीं कहा ओवरलोड, किसी ने कहा ओवर वर्क, किसी ने नहीं कहा टू मच, इतना भी नहीं। जो ये कहते हैं वो बिल्कुल कुछ ना करें, क्योंकि सारे एक लेवल के नहीं होते, और कार कोई और ही होते हैं और गम दूसरों को बड़ा होता है कि हाय। तो याद रखिए, ये नसीब से काम होते हैं। साहबा ने जरा पसो पेश नहीं किया और चल पड़े। अब तो दुश्मन को खबर हो गई, ओहो नबी सल्लम के साथ फिर लोग आ गए, अब जुरत नहीं थी सामना करने की। अबू सुफियान साहब ने, जो अभी उस वक्त इस्लाम पे नहीं थे, एक शख्स को कुछ पैसे दिए, रिश्वत दी, कहा जाकर एक झूठी खबर आम कर दो कि अबू सुफियान के साथ तो बड़ा फ्रेश लश्कर आ रहा है हथियारों से लैस। मुराद ये था कि मुसलमानों का मोरल डाउन कर दो, हिम्मत तोड़ दे। कहा ठीक है चलो। वो पैसे लेकर आए और उसने कहा तुम्हें नहीं पता वहां तो ये हो रहा है। कहा अच्छा। अब जुमला सुनिए, सहाबा का जुमला ये, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमाऊ लकुम फख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानं वक़ालू हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। और वो जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौज जमा हुई है, इनसे डरो, यानी डराया गया लोगों से सहाबा को, तो सहाबा ने क्या कहा? ये तो सुनकर इनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। क्या नहीं लगता कि हम पे भी कोई ऐसा मामला आए कि हम भी ये जुमला बोले? अल्लाह हमें साहबा जैसा ईमान दे दे और फिर ये जुमले सुने दुनिया हमारे, और फिर अल्लाह हमारी इज्जतें भी रख ले, ये दुआ किया करें। तो आप भी कहिए हस्बुनल्लाह व नियमल वकील। आप देखिए बादलों के ऊपर आसमान और आसमानों के ऊपर जन्नतें और जमीन की तहें, सब कुछ चलाने वाला क्या आपके मेरे छोटे बड़े काम नहीं कर सकता? सिर्फ जमीन आसमान सूरज चांद ही नहीं, अनगिनत इनसे भी बड़े बड़े जिस्म हैं, और इस अल हसीब की किफायत और हुस्बान से फिजा में तैर रहे, और इस खूबी से कि एक दूसरे से टकराते ही नहीं, इल्ला ये शाअल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ही चाहे। सूरह कहफ की आयत 24 में अल्लाह कहते हैं जब तक मैं नहीं चाहता कुछ नहीं होता। तो ये भारी भरकम मुअल्लक गेंदें सूरज और चांद की सूरत में इधर उधर चलती फिरती घूमती फिरती हरकत करती, फिर भी नहीं गिरती, आपस में नहीं टकराती, तो ये अलहसीब की कुदरत का करिश्मा है। अक्लें हैरान रह जाती हैं, क्या अजीबो गरीब कारीगरी और अजीबो गरीब उसका निज़ाम है। ज़रूरत ये है कि हम भी अपने आप को उसके हाथों में दे दें। अल्लाह क्या तुम्हें दे दीजिए खुद को, डोंट वरी, आपको गिरने नहीं देगा, आपको लुढ़कने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा नहीं करेगा आपका रब, बड़ा प्यार करता है वो आपसे। चलिए एक और आयत लीजिए फिर, अलगाशिया 25:26, इन्ना इलैना इयाबहुम, इन लोगों को पलटना हमारी ही तरफ है, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही जिम्मे है। कहाँ तक जाओगे? हम अपने अच्छे बुरे अमाल की जजा सजा के लिए किसी के मुख्ताज नहीं, क्योंकि वो अल हसीब हमारे लिए काफ़ी है। आप देखिए कि हमें अपने नेक अमाल की जजा के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और अपने अमाले बद की सजा की माफ़ी के लिए किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ती। हमारे मजहब में पार्डन नहीं है, जीजिस से जाकर हम अपनी बख्शिश नहीं मांगते, और $500 देकर प्रीस से जाकर अपने गुनाहों का कन्फेस करके कफारा नहीं करते, वो हमारे लिए काफ़ी है। हमें इसके दर के सिवा किसी का दर खटखटाने की ज़रूरत नहीं। हम तो कहेंगे हसबुनल्लाह व नेमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, क्योंकि हिसाब उसको देना, और शुक्र कीजिए कि हिसाब उसको देना। सुफियान सॉरी कहा करते थे कि क़यामत के दिन अगर मुझे चॉइस दी जाए कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे माँ बाप लें या अल्लाह ताला ले, तो किसको चूज करोगे? तो कहा मैं तो अपने रब को चूज करूंगा। माँ बाप के ऊपर भी वो एतमाद नहीं है जो अल हसीब पे है। तो कहिए अल हसीब, हमारा हिसाब तू लेना, आप लीजिए मेरा। किसी से बड़ा प्यार होता है ना, आप कहते नहीं मैंने उसको दिखाना। बच्चे भी बाज़ बाज़ ज़िद करते हैं ना, नहीं मैंने मामा को सबक सुनाना है, नहीं मामा गुस्सा करती है, मैंने बाबा को सुनाना है, आंटी को सुनाना है। वही जहन में ले आइए। और सूरह तलाक की आयत 3, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करे इसके लिए वो काफ़ी है। देखिए ऊपर नीचे दोनों आयतों को देखकर दो मानी समझ आ रहे हैं ना, कैसे अल्लाह ताला किफ़ायत भी करता है और हिसाब भी लेता है। यानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ खूबियाँ एक नाम में छुपी हुई हैं। जितना इस पे गौर करेंगे उतना परेशान नहीं होंगे। और सूरत बनी इसराइल की आयत 14 को हिर्ज़े जान बना लें, यानी लाजिम पकड़ लें। क़यामत के रोज़ हर एक अपना हसीब खुद होगा। आज अल हसीब है, क़यामत के दिन भी वो होगा, लेकिन अल हसीब मौका देगा कि थोड़ा सा हिसाब तुम खुद अपना भी तो करो। कैसे? इक़रा किताबक कफ़ा बि नफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ अपना नामे अमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। दुनिया भर में जिंदगी भर लोगों का हिसाब लेते देते रह गए, ज़रा से तराजू को देखिए। क़यामत के रोज़ हर एक अपना हसीब कैसे होगा? क्या अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद पढ़ के सुनानी पड़ेगी? इस तराजू पे ज़रा नज़र डालकर सोचिए, क्या क़यामत के दिन मैं अपने हिसाब किताब को खुद मैनेज कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो फिर ज़रूरी नहीं कि आज हम उसके ऊपर अपने आप को डाल दें और आज ही अपना हिसाब कर लें। हासिबु कबलान तो हासबु। और अगर आप अल हसीब लफ्ज़ को अहादीस की रोशनी में देखें तो फिर तो इतनी खूबसूरत हदीसें हैं आपके सामने। सबसे पहली हदीस सही बुखारी में है 4563, हसबुनल्लाहु वनीमल वकील कलमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था उस वक्त जबकि इनको आग में डाला गया। और यही कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा था कि लोगों यानी कुरैश ने तुम्हारे खिलाफ़ बड़ा सामान जंग इकट्ठा कर रखा है, इनसे डरो। लेकिन इस बात ने इन मुसलमानों का जोश ईमान और बढ़ा दिया और ये मुसलमान बोले कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है, हमारा उलसत। तो आप देखिए इब्राहिम के लिए आग ठंडी कैसे हुई। वकुलना या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा है आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पे, लेकिन इतनी ठंडी नहीं कि बहुत ही ठंडी हो जाए, ज़रा सलामती के साथ रहना, यानी रूम टेम्परेचर। और वाकई फिर अल्लाह ने ये किफ़ायत कर दी ना। तो क्या आप मैं किसी मुश्किल में हों तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे। फिर इसी तरह एक और रिवायत लीजिए, मुस्तनद अहमद की रिवायत है 7488, फिरोज दैलमी से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम अंगूरों के मालिक हैं, अब शराब की हुरमत नाजिल हो चुकी है, अब हम अंगूरों का क्या करें? यानी एक चीज़ पहले हलाल थी, अब हराम है, तो अब क्या करें? आपने फरमाया इनका मुनक्का तैयार कर लो, यानी इसको सुखा लो, जैसे सौंगी होती है ना रेजन, वो बना लो। उन्होंने कहा फिर हम मुनक्के का क्या करें, यानी इसके बाद और फिर क्या कर सकते हैं हम? आपने फरमाया इसे सुबह पानी में डालो और शाम के खाने के साथ पियो, और शाम को पानी में डालो और सुबह को पी लो। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये आज सुबह भी मेरी किसी से बात हुई। बस दफ़ा आपके बॉडी में आयरन कम होता है ना, फास्फोरस और यहाँ यान बोलते हैं गालिबन उसको, तो उसका इलाज किसी ने बताया कि 7-8 दाने रात को भिगो दें पानी में, सुबह उठकर पानी भी पी लें और वो सौंगी भी खा लें। और देखे हदीस में यह, मुझे नहीं पता थी ये बात की हदीस में, लेकिन ये किसी ने बताई थी, तो ये आप भी कर लीजिए अगर आप एनेमिक हैं, खून की कमी का शिकार हैं। हम तो सुनने समझ के करेंगे तो और भी अजर लेंगे इंशाल्लाह। तो खैर, मैंने कहा आपको मालूम है कि हम जिस कौम से हैं इनमें से हम ही ईमान लाए हैं, हमारी कौम तो ईमान नहीं लाई। यानी हम छोड़ देंगे शराब और ये बिजनेस सब कुछ, लेकिन सब तो नहीं छोड़ेंगे। और आप ये जानते हैं कि हम काफिर कौम के दरमियान भी रहते हैं, अब हमारा वली कौन है? आपने फरमाया अल्लाह ताला और उसका रसूल। मैंने कहा है ए अल्लाह के रसूल, मुझे यही काफ़ी है। साहबा इतने मुश्किल वक्तों में भी इतनी जल्दी फैसला कर लेते थे हराम को छोड़ के हलाल पे आने का? हम कई बार सालों गुजर जाते लेकिन हम हराम नहीं छोड़ पाते, गलत चीज़ें नहीं छोड़ पाते, अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। एक और रिवायत लीजिए, मुजाहिद और इकरमा से ये मनकूल है। एक मरतबा अल्लाह के नबी किसी मामले के लिए यहूद बनी नज़ीर के पास तशरीफ़ लाए। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीवार के नीचे बिठाकर बातों में मशगूल किया और दूसरी तरफ अमरा बिन जाहश को इस काम पर मुकर्रर कर दिया कि पीछे से ऊपर चढ़कर एक चट्टान आपके ऊपर डाल दे। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इरादे से मुत्तले फरमा दिया। और आप फौरन वहां से उठ गए। ये अल्लाह काफी होता है, ये है किफायत खासा। और ये सूरत मायदा की आयत 11 में आप खुद भी पढ़ सकते हैं वाकया। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है 2876 हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा से, जिसका भी हिसाब किताब शुरू हो गया वो हलाक हो गया। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ये नहीं फरमाता कि आसान हिसाब होगा, यानी मैं यो खास अब हिसाब यसीरा। आपने फरमाया वो तो हिसाब के लिए पेश होना है, मुनाकिशा कहते हैं इसको अरबी में, लेकिन जिससे मुहासबे में पूछगिछ शुरू हो गई वो हलाक हो जाएगा। वही मिसाल याद कर लें जो शुरू में दिए कि अगर पटारा खुल गया, अगर लगेज खुल गया तो फिर तो एक एक चीज़ तो लेगी। अल्लाह हमारा हिसाब आसान करे, अल्लाह महासिब ना हिसाब यसीरा। इसी तरह सही बुखारी की एक रिवायत ले लीजिए 25 नंबर 25। आपने फरमाया मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि लोगों से जंग करूं, इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगे और ज़कात अदा करें। जिस वक्त वो ये करने लगें तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के। रहा इनके दिल का हाल तो इनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। क्या पता चला कि लीडर्स को बहुत कुरेत नहीं करनी चाहिए, जाहिर पे क्यास करके मामला छोड़ दें, बाकी अल्लाह पे डाल दें। अल्लाह हमें अमल वाला बना दे। एक और हदीस सुनन निसाई 467, अबू हुरैरा रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन सबसे पहले बंदे से जिस चीज़ का हिसाब होगा वो इसकी नमाज होगी। तो लिखिए क्यामत के दिन अल हसीब आमाल में जो पहला हिसाब करेगा वो नमाज का होगा, और इंसानी मामलात में आपको पता है कत्ल का हिसाब होगा। फरमाया अगर नमाज मुकम्मल पाई गई तो मुकम्मल लिखी जाएगी, और अगर इसमें कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला फरमाएगा देखो क्या तुम इसके लिए कुछ नफिल पाते हो जिसके साथ इसके ज़ाया करदा फ़राइज़ की कमी पूरी कर दी जाए, फिर बाकी अमाल भी इसी के मुताबिक जारी होंगे। ये है उसका प्यार, कॉम्पनसेट करेगा फ़राइज़ को नवाफिल के साथ। अल्लाह हमारी नमाजों की हिफाजत करवा दे दुनिया में। इसी तरह मिश्कात की रिवायत है 5296, आपने फरमाया मुझ पर उम्मतें पेश की गईं, यानी ये भी आपकी नबूवत के मामलात में से था। चुनाचे एक नबी गुजरे और इनके साथ एक आदमी था, और एक और नबी थे और इनके साथ दो आदमी थे, और एक और नबी थे इनके साथ चंद आदमी थे, जबकि किसी नबी के साथ कोई एक भी न था। मैंने एक बड़ा गिरोह देखा जो उफक तक फैला हुआ था। मैंने उम्मीद की कि ये मेरी उम्मत होगी, लेकिन मुझे बताया गया कि ये मूसा अपनी कौम के साथ है। फिर मुझे कहा गया देखो मैंने बहुत बड़ा गिरोह देखा जो उफक तक फैला हुआ था। मुझे कहा गया दाईं तरफ देखो, फिर बाईं तरफ देखो। मैंने बहुत बड़ा गिरोह देखा जो उफक पर फैला हुआ था, यानी पहले से भी बड़ा था। फिर मुझे बताया गया कि ये आपकी उम्मत और इनके साथ इनके आगे 70,000 70,000 हैं जो हिसाब के बगैर जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि बदशगुनी नहीं लेते थे, ना दम झाड़ करते थे और ना ही दागते थे, और वो सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल करते थे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें इनमें करे, मत पड़िए ऐसी झाड़ फूंक में। दम दरू झाड़ फूक जो सुन्नत है बस उस पर रुक जाइए, और कह दीजिए कि अल हसीब हम तेरे ऊपर आपको लाते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी तरह से सही बुखारी की एक रिवायत 2641 उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो से, अल्लाह के नबी सल्लम के ज़माने में लोगों का वही के जरिए मुआखजा हो जाता था, लेकिन अब वही का सिलसिला ख़त्म हो गया और हम सिर्फ इन्हीं उमूर में मुआखजा करेंगे जो तुम्हारे अमल से हमारे सामने ज़ाहिर होंगे। इसलिए जो कोई जाहिर में हमारे सामने खैर करेगा हम इसे अमन देंगे और अपने करीब रखेंगे। देखिए बींग अ लीडर या खलीफा हजरत उमर का इंसाफ, इसके बातिन से हमें कोई सरोकार ना होगा, इसका हिसाब तो अल्लाह ताला करेगा, और जो कोई हमारे सामने जाहिर में बुराई करेगा तो हम भी इसे अमन नहीं देंगे और ना हम इसकी तस्दीक करेंगे, ख्वाह वो यही कहता रहे कि इसका बातिन अच्छा है। लीडरशिप का बेहतरीन नुक्ता इस पे बाद में गौर कीजिएगा। तो अल हसीब से मुतल्लिक अहादीस और बहुत सारी हैं, वाकयात भी हैं, लेकिन हम चलते हैं आगे दुआओं पे, अज़कार और दुआएं। कैसे अल्लाह ताला बंदे को काफ़ी होता है। अबू दाऊद की रिवायत है सुनन अबी दाऊद 5081, अबू दरदार रज़ी अल्लाहु अन्हो से ये रिवायत मौकूफ़ है। क्या कि जो हर दिन सुबह शाम 7 बार ये पढ़ेगा अल्लाह ताला इसकी तमाम मुश्किलात को आसान कर देगा और इसकी हाजतों को पूरा कर देगा। और जुमला वही है जिसके अल्फाज सूरह तौबा के आखिरी आयतों में है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मेरे लिए अल्लाह बस काफ़ी है, कोई माबूद नहीं मगर वो, इसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अज़ीम का। इसको अपनी जान बना ले। और मैं कहती हूँ अक्सर कि दुनिया के तो छोड़िए आखिरत के भी गम कम हो जाते हैं इसको पढ़ के। तो शऊर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। इब्ने हब्बान की ये रिवायत है 7372, और नासिरुद्दीन अल्बानी ने भी इसको सही कहा। सिफ़ातु सलात में ये उठते बैठते पढ़ा करें, अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। हसबुनल्लाह व नेमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी और वही बेहतरीन कारसाज है। और इसी तरह एक दुआ है जो दुश्मन जब कभी दुख दे या बहुत कत्लो गारत हुआ, मक्की दौर की भी कहानी है इसमें बहुत सी और बाद में भी, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे मौक़ों पर एक बद दुआया कलमा बोला था। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं 1742, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताबी सरियल हिसाबी इहज़िमिल अहज़ाबा अल्लाहुम्मा इहज़िमहुम वज़लज़िलहुम। ए अल्लाह, किताब को नाजिल करने वाले, जल हिसाब लेने वाले, मुखालिफ गिरोहों को हिला कर रख दे। अल्लाह इन्हें शिकस्त दे और इन्हें हिला कर रख दे। देखिए, अल हसीब को बीच में डाल लें तो आपको बीच में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर इसी तरह से आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लम अपनी बास नमाज़ों में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 1356। नंबर देखिए कितनी हदीसें हैं, सबसे तवील सिलसिला एक अहादीस है मुस्नद अहमद, 25 जिल्दें हैं इसकी, डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट तरह छापा इसको। बताइए, अल्लाह के नबी को इस दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है या आपको मुझे? फिर इसी तरह से किसी पे अगर कर्ज़ है तो कर्ज़ की अदायगी की दुआ, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बि हलालिक अन हरामिक वाग़निनी बि फ़ज़लिक अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, तो मुझे अपनी हलाल करदा चीज़ के ज़रिए अपनी हराम करदा चीज़ से काफ़ी हो, और मुझे अपने फ़ज़ल के ज़रिए अपने अलावा सबसे बेनियाज कर दे। अल्लाह न करे कर्ज़ों में चले गए, और वो भी कर्ज़ वो जिसमें कहीं सूद का कोई और हराम का अंदेशा है। कसरत से दुआ मांगिए और हालात ऐसे बनाइए कि उससे जान छुटे। असबाब भी इख्तियार कीजिए और ये दुआएँ भी लीजिए। तो अल हसीब से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए अल मौइज़तिल हसना, क्या करें इस नाम को सुन के? पहले तो इस बात को याद रखिए कि बंदे की हिम्मत और इरादे में, जैसी आपकी हिम्मत और इरादा होगा, अल हसीब आपको काफ़ी होगा। ईमान के जिस लेवल पे होंगे, अल्लाह आपको वहीं ले जाएगा। मुसलमान का कामिल भरोसा अल हसीब पर होना। जब इतनी बड़ी कायनात के लिए अल हसीब काफ़ी है, तो मेरे लिए क्यों नहीं, ये सवाल कीजिए। और किफ़ायते आमा से किफ़ायते खासा पर आने की शर्त तकवा है, इसे पाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला के अलावा किसी को अपने लिए काफ़ी नहीं जानना। अगर कोई काम आता है ना, तो अल्लाह की इज़्ज़त से आता है, बस, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको तक अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में काब बिन अशरफ यहूदी ने आपको अपने घर बुलाया, कत्ल की साजिश की, अल्लाह ने वक्त पे राज खोल दिया और आपको काफ़ी हो गए। अगर ज़िंदगी में आपको मुझे भी किसी ऐसे किस्म के हालात देखने पड़ जाएं तो क्या होगा? अल हसीब को बुलाइए, जब उस पर आप यकीन रखेंगे तो दूसरे सब पीछे हो जाएंगे। बाज़ लोग कहते हैं अल हसीब के मानी क्या है कि इनकान अल्लाहुमा का फमन तखाफु व इनकान अलई का फमन तरजू। ये जुमला लिखी है, मैं बोलूंगी दोबारा आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता, पहले तर्जमा सुन लें। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें किस चीज़ का डर है, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं तो तुम किससे उम्मीदें लगाए बैठे हो? मेरा अल्लाह तौहीद की बुनियादी इकाई है इस जुमले में, लिख लीजिए, इन कान अल्लाहु मा आका फमन तखाफा व इन कान अलई का फमन तरजू। आप कहेंगे कि ये हमें कहाँ मिल सकती है, तो इसी को दोबारा पीछे करके जाके सुन लीजिएगा, और इसके अंदर आपको रेफरेंस भी दे देती हूँ। शरा अल अस्माउल हुस्ना है, मुरकात अरबी किताब, असल में उसकी जिल्द 587 पे ये दुआ मौजूद है, यानी तारीफ है अल्लाह के इस नाम की। तो फिर हम जब ये सारा कुछ पढ़ पढ़ा लें, सुन लेते हैं, तो अल्लाह से कहिए कि मेरे मालिक, तू ही मुझे काफ़ी है, मुझे किसी की और ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, जब वो ज़ात सबको काफ़ी है, जब वो सबके लिए है, तो फिर आपको मुझे उसके साथ ताल्लुक़ मजबूत करना है ना। जब वो बंदों की किफ़ायत पर कादिर है, उनके काम बनाने पे कादिर है, उनकी फरियादों को पूरा करने पे, तो क्या उसको अपने दरबार में किसी सीढ़ी की ज़रूरत है? ये जो जुमले लोग बोलते हैं, जी दरबार में दरबारी हैं और आसमान पे सीढ़ी है, ये दुनिया वालों की मजबूरियां हैं। कोई चपड़ासी है, कोई मुंशी है, कोई कासिद है, कोई पेशकार है, कोई वजीर मशीर, अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं। तो सब लिखिए, फिर इस नाम से ताल्लुक़ जोड़कर शिर्क को ज़िंदगी से ख़त्म करना है। लिखिए अमल के नुक्ते, सिर्फ़ अल हसीब पे नज़रें रखना है। जो अपनी नहीं बना सकते, वो आपकी बिगड़ी कहाँ बनाएंगे? तो बिगड़ियाँ बनाने वाला अल हसीब है, वो ना करे तो कोई नहीं करता। इमाम शाफ़ी रहमहुल्ला ने मरज़ुल मौत में, यानी जब दुनिया से रुख्सत हो रहे थे, तो उस वक्त कुछ अशआर बयान किए थे, और जिसमें जुमला था कि मैं अल हसीब को काफ़ी समझता हूँ। मैं भी पढ़ती हूँ और आप भी अपने लिए दुआ कीजिए, और साथ ही साथ अपना मुहासबा करना है इससे पहले कि हमारा हिसाब किया जाए, और इन लोगों की फहरिस्त में शामिल होना है जिनका हदीस की रोशनी में आसान हिसाब होगा। इसी तरह हमने दूसरों के साथ हिसाब किताब में नरमी बरतनी है। तो देखिए क्या कहते हैं इमाम शाफई, कहते हैं कि अंत हस्बी वफी कलिल कल्बी हस्बु वली हस्बी इन सहली फी का हस्बु ला उबाली मता विदा दुका ली सहा मैंने दहरी मतारदा खतबु। तू मेरे लिए काफी है और दिल में तेरे बारे में अच्छा गुमान है और मेरा तेरे लिए अच्छा गुमान मुझे काफी है। जब मुझे तेरी सच्ची मोहब्बत हासिल है तो मुझे मुसीबतों और परेशानियों की कोई परवाह नहीं। दुआ कीजिए कि जब हमारी मौत का वक्त आए तो हमारा भी अल्लाह पर इतना यकीन हो, इतनी मोहब्बत हो, इतना अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़िए, अपने आप को हमेशा उसके हाथों में दे दीजिए और फिर दुनिया से बेन्याज हो जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता जब वो सबको देख रहा है, तो फिर मेरा आपका के एक एक आंख के देखे का हिसाब रखिए, कान से सुने का, मुंह से बोले का, और वही बात है हासिबु कबलन तो हासबु, उस दिन की तैयारी कीजिए इससे पहले कि हमारा हिसाब हो। तो ये था अल हसीब, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।